इस साल के कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। दशम स्कंध की चर्चा करते करते हम 21वें अध्याय तक आ पहुंचे हैं, जिसका शीर्षक है वेणु गीत। इस अध्याय के अंत में हम पहुंच चुके हैं। 3-4 श्लोक ही बचे हुए हैं। संक्षेप में, पिछले 1-2 सालों में जो चर्चा हुई है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण और उनके अन्य विस्तारों में 4 विशेष अंतर हैं: रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी। भगवान के वेणु वदन से सारे प्राणी आकर्षित हो जाते हैं और इस अध्याय में इस आकर्षण का वर्णन हमें सुनने में आता है। सबसे तीव्र आकर्षण भगवान कृष्ण के वेणु वदन से वो वृंदावन की गोपियां अनुभव करती हैं और इस मनमोहक ध्वनि को सुनकर उनका चित्त बहुत ही विचलित हो जाता है भक्ति भाव से। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का की वेणु की ध्वनि बहुत सुंदर है और जब ये शरद ऋतु में भगवान कृष्ण बजाते हैं तो ये और भी मीठा हो जाता है, क्योंकि शरद ऋतु 6 ऋतुओं में से सबसे सुंदर है, मनोहर है और विशेष करके वृंदावन शरद ऋतु में अति सुंदर होता है। तो ये वेणु गीत गोपियां भगवान श्री कृष्ण के शरद ऋतु के बांसुरी वादन के बारे में विशेष वर्णन करते हुए बोल रहे हैं। गोपियां अपने ही घर में हैं, वृंदावन में, गांव में हैं, लेकिन स्मरण कर रही हैं श्री कृष्ण के बांसुरी वादन का, जो उन्होंने पहले सुना था। श्री कृष्ण तो वन में चले गए हैं अपने गायों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ। हालांकि शरद ऋतु ये कई अच्छे गुण हैं, आकर्षक गुण हैं, परंतु भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि यह मुख्य आकर्षण है, विशेष गुण है शरद ऋतु का, और इसका आस्वादन अब गोपियां कर रही हैं। आपस में छोटे छोटे दलों में एकत्र होकर वो चर्चा करती हैं। आप तो जानते हैं कि वृंदावन एक छोटा सा गांव था और इस गांव में गोपियां अपने अपने घर के कार्य करते थे, मंथन करना या गोबर का लेप लगाना, ऐसे कई चीजें करते थे और जब एकत्र मिलते थे तो केवल कृष्ण कथा करते थे। आपस में वही चर्चा चलती थी कि आज कृष्ण ने क्या किया, आज कृष्ण ने क्या कहा, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या करते हैं, उनके मित्रों ने क्या किया, किस तरह गायों को चराने जाते हैं, आज कृष्ण ने किस तरह से बांसुरी बजाई, कौन से असुर का वध किया। इस प्रकार से 24 घंटे ब्रजवासियों का और विशेष करके गोपियों का मन कृष्ण में ऐसे ही स्थित रहता था। जब भगवान श्री कृष्ण वन में चले जाते थे, गांव से बाहर चले जाते थे, अर्थात साधारण दृष्टि से बाहर हो जाते थे, फिर भी गोपियों के मन से बाहर नहीं चले जाते थे। जब भगवान कृष्ण गायों को चराते तो गोपियां उसी दृश्य को अपने हृदय में देखती और उसका वर्णन करती। भक्ति को वास्तव में कोई भौतिक सीमा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से आध्यात्मिक है। भक्ति देवी की कृपा जब किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाती है तो उसे समय और काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में काल उस तरह से कार्य नहीं करता जैसे कि यहां पर भौतिक जगत में। और जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक जगत में दूरी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का धाम एक कमल पुष्प के समान है, कभी छोटा कभी बड़ा, भगवान की लीलाओं के अनुसार, जो भी उनकी लीलाओं के लिए अनुकूल है, रसवर्धक है, वैसे ही गोलोक वृंदावन उसमें सहकार्य करता है। तो उसी तरह से गोपियां हालांकि यहां गांव में हैं और श्री कृष्ण दूर वन में हैं, भ्रमण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं अपने ग्वाल बालों मित्रों के साथ, फिर भी गोपियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने चित्त में इन्हीं सारे दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख रही हैं। और इसके बारे में सोचते सोचते, चिंतन करते करते, बात करते करते, सुनते सुनते वो खो जाते हैं इन लीलाओं में। और इन लीलाओं में ऐसे खोने में और प्रत्यक्ष इन लीलाओं में भाग लेने में कोई अंतर नहीं है। यह है भक्ति का स्तर, पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट में हैं और यमुना के तट में चलते चलते, भ्रमण करते करते गोपियां ये वर्णन कर रही हैं। जो भी वृंदावन के वासी हैं उन सबको वो श्रेष्ठ भक्त समझती हैं। आत्मवान मन्यते जगत, जो हम हैं हम वही आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हैं। अगर हम भ्रष्ट हैं, सोचते हैं अरे सभी लोग भ्रष्ट हैं तो हम भ्रष्ट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता, सभी लोग इस समाज ही भ्रष्ट हैं तो हमें भी भ्रष्टाचार करना चाहिए। हम लोभी हैं तो सोचते सभी लोभी हैं। तो उसी प्रकार से गोपियां भी सोच रही हैं कि सभी लोग भक्त हैं, और साधारण भक्त नहीं, श्रेष्ठ भक्त, उनके चित्त में कृष्ण समाये हुए हैं। और ये सब इतने भाग्यशाली हैं कि उनके सामने हमारा तो भाग्य ही नहीं है, हम तो दुर्भाग्यशाली हैं उनकी तुलना में। और इस प्रकार से जब वेणु गीत आरंभ होता है तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने के पश्चात वो वृंदावन के अनेक निवासियों का वर्णन करते हैं, जैसे वृंदावन के गाय, गायों के बछड़े, मोर और अन्य पक्षी, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की भूमि, पृथ्वी माता, वहां के मृग और अन्य पशु, यहां तक कि देवी देवियों की भी, स्वर्ग के देवियों का भी वर्णन करते हैं, पहाड़ों का वर्णन करते हैं। और इन सब को देखकर गोपियां कहती हैं कि ये सबसे भाग्यशाली है। यहां तक कि जो बादल है जो कि छत्र के रूप में, एक छत्री के रूप में छाया दे रहा है कृष्ण और उनके मित्रों को, यह भी कितना भाग्यशाली है। इन सब के हृदय में राग भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है। और ये जन्म कितना ऊंचा है, हमारा तो इतना सौभाग्य नहीं है। ये जितने भी लोग हैं, ये पशु प्राणी भक्त हैं, हमेशा कृष्ण के साथ साथ रहते हैं, तो बांसुरी की बात तो दूर है। लेकिन हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम श्री कृष्ण को केवल दिन में दो बार देखते हैं, पहली बार जब वो सुबह अपने घर से निकलते हैं और सीधे वन में चले जाते हैं, थोड़े क्षण के लिए दिखाई पड़ते हैं बस, और संध्या के समय, गोधूली का समय जो होता है, जब वो लौट के आते हैं और फिर अपने घर में चले जाते हैं, बस दिन में दो बार हम उनको देखते हैं, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। परंतु ये वन के पक्षी हैं, पशु हैं, वृक्ष हैं, ये बादल हैं, बांसुरी है, गाय हैं, ये ग्वाल बाल मित्र हैं, ये तो सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं, दिन भर कृष्ण के साथ में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म इनके कुल में हो जाए, शायद हम भी अगले जन्म में कोई वृक्ष बन जाएं इस वन में, हम भी एक मृग या हरिण बन जाएं, हम भी कोई मोर बन जाएं, हमारे अगले जन्म भी शायद हमको बांस के कुल में जन्म मिले, ताकि हमारा संबंध तो उस बांसुरी से होगा, क्योंकि बांसुरी वो जो है वो बांस के समाज का है। तो इस प्रकार से गोपियां जल्प कर रही हैं, बात कर रही हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बड़बड़ा रही हैं, भौतिक दृष्टि से इसका कोई मतलब नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति अगर इन बातों को सुनता तो सोचता कि ये लोग पागल हो गई हैं। लेकिन भक्ति में वास्तव में जब भाव में आ जाती हैं गोपियां और अन्य ब्रजवासी, इसी प्रकार से बात करती हैं। ये कोई साधारण पागलपन नहीं है, ये श्रेष्ठ आध्यात्मिक पागलपन है जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ऐसे गोपियां वर्णन करते करते अब आ पहुंचे हैं उन भाग्यशाली महिलाओं के बारे के संदर्भ में जो कि आदिवासी हैं, पुलिंद समाज के हैं, शबरों में से एक हैं। आदिवासी सब वन में रहते, वनचारी हैं, और उनको देखते हैं अपने हृदय के आंखों से, और उनका वर्णन अभी इस 17वें श्लोक में वो करने वाले हैं। तो वेणुगीत का ये अंतिम भाग है, केवल 2-3 श्लोक बचे हुए हैं। तो आइए इस सुंदर श्लोक को हम पढ़ते हैं।
पूर्ण पुलिंद उरुगाय पदाब्ज रागा श्रीकुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस्त्रिण रूषितेन लिंपन्ते आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम् पूर्णः पुलिन्द्यौरुगाय पदाब्ज राग श्रीकुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस्त्रिण रूषितेन लिंपन्ति आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम्
यह अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। वृंदावन क्षेत्र की आदिवासी स्त्रियां लाल लाल कुमकुम चूर्ण से अंकित घास को देखकर काम से पीड़ित हो उठती हैं। कृष्ण के चरण कमलों के रंग से प्रदत्त यह चूर्ण मूलतः उनकी प्रेमिकाओं से के स्तनों का अलंकृत करता था, और जब उसे ही आदिवासी स्त्रियों अपने मुखों तथा स्तनों पर मल लेती हैं तो उनकी सब चिंताएं जाती रहती हैं। पुलिंद्या, तो ये पुलिंद्य कौन है? वास्तव में जैसे अनुवाद में बताया गया है, ये आदिवासी वर्ग है, वनचारी, जंगल में रहते हैं, ज्यादा सभ्य नहीं है भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो। इनका समाज शबरों में एक माना जाता है। शबर मतलब जो निम्न श्रेणी का वर्ण है या निम्न श्रेणी की जाति है, जो वर्णाश्रम से भी निम्न श्रेणी में माना जाता है, और अपने आप को इस वर्ग के पुरुष जो हैं खेती में काम करके या तो पालकी अपने कंधों पर धारण करके ऐसे अपना गुजारा करते हैं। और पुलिंदियां, पुलिंदी मतलब जो स्त्रियां हैं इस पुलिंद जाति के, वो दिन भर वन में घूमती हैं, लकड़ियां उठाती हैं, गोबर एकत्र करती हैं, और उसको थोड़ा बहुत बेचकर फिर जो बाकी रहता है अपने घर के लिए इस्तेमाल करती हैं। साथ साथ जो भी कंदमूल जड़ी बूटियां इधर उधर फल फूल मिलते हैं वन में, उसको भी एकत्र करते हैं और ऐसा गुजारा करते हैं। अब ये जो पुलिंद हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो चुकी हैं, पुलिंद स्त्रियां। क्यों? क्योंकि कोई सौभाग्य से उनका भी निवास स्थान व्रज में ही था, और कभी कभी भ्रमण करते करते जब वृंदावन के पास आते या गोवर्धन के पास आते तो कभी कभी वह भगवान श्री कृष्ण को अपनी लीलाओं करते हुए देखते, अक्सर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनते और ऐसे सुन सुनकर देखकर कृष्ण के प्रति इतना तीव्र आकर्षण हो गया कि वो भी भगवान कृष्ण की भक्त बन गई। वैसे श्रीमती राधा रानी भी इन पुलिंदियों के ऊपर बहुत कृपालु थी, इसलिए उनको कभी कभी बुला लेती थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में कहते हैं कि एक बार जब श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ऐसे ही एक लीला कर रहे थे जुआ खेलने का, तब श्रीमती राधा रानी ने एक पुलिंद स्त्री को आपस में बुलाया और उनके निकट बैठने के लिए कहा, और ये अधिकार केवल सखियों को है, मंजरियों को है, लेकिन श्रीमती राधा रानी ने ऐसी कृपा की उस पुलिंदी के ऊपर कि उसको अपने बीच में बिठाया। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पुलिंदी भी कितने भाग्यशाली हैं। उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है दान केली चिंतामणि, जिसमें भी वो इसी तरह का वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने कैसे पुलिंदी स्त्रियों के ऊपर ऐसी कृपा की। तो इसलिए ये हालांकि नीच जाति के माने जाते हैं भौतिक दृष्टि से, फिर भी बहुत महान भक्त हैं। इनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र अनुराग है। दिन भर वो केवल कृष्ण भगवान के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे गोपियां वृंदावन में करती हैं। इनके भी घर में काम रहते हैं, वो भी मंथन वगैरह करते हैं दूध दही का, वो भी अपने घर में कोई ना कोई गोबर का लेप लगाते हैं इत्यादि। तो जैसे वृंदावन में गोपियां करती हैं वैसे ही ये पुलिंदी भी करती हैं। तो ये लक्षण है भक्त का कि भक्त किस चीज के बारे में सुनता है, किस चीज के बारे में बोलता है, किस चीज के बारे में सोचता है। खैर सोचना तो कठिन है, समझना कि आदमी क्या सोच रहा है, और बाहरी कार्य भी देखने से कभी कभी कठिन हो जाता है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन भी आखिर बाहरी दृष्टि से एक ही कार्य कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, परंतु दोनों की चेतना अलग थी। परंतु व्यक्ति के बोल चाल से, उसके श्रवण कीर्तन की रुचि से हम जान सकते हैं कि उसका स्तर क्या है, वो कौन है, उसका मन क्या है, किन चीजों के बारे में वो सोचता है। तो ये पुलिंद स्त्रियां भी दिन भर कृष्ण कथा करती थी और सुनती थी, और जहां श्रवण कीर्तन किसी एक विषय के ऊपर होता है तो अवश्य स्मरण भी, चिंतन मनन भी उसी विषय के ऊपर होगा। इसका मतलब है कि जाति जो है या जन्म, ऊंचा हो या नीचा, ये भक्ति में कोई बाधक वस्तु नहीं है। इतिहास में कितने सारे उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने नीच तथा कथित नीच जाति में जन्म लेकर भी भक्ति के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया। ऐसे कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? कनकदास, ठीक है, यहां पर पास में, और हरिदास ठाकुर, उन्होंने एक यवन कुल में जन्म लिया और लोग उनको मंदिरों में भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी वो नामाचार्य बने, और वाल्मीकि मुनि बनने के पहले भी वो एक नीच जाति के थे, तथा कथित नीच जाति के, डाकू थे, कई पाप करते थे, लेकिन संत बन गए। प्रहलाद महाराज का नाम आप भूल गए? प्रहलाद महाराज का जन्म कौन से कुल में हुआ था? एक असुर कुल में हुआ था, बलि महाराज भी, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचे भक्त निकले। विभीषण राक्षस कुल में जन्म लिए, फिर भी महान भक्त हुए, और हनुमान जी वैसे वानर योनि में, लेकिन मनुष्य समाज अगर देखा जाए तो ये सब और उदाहरण हैं। शबरी, शबरों में से शबरी ने, यहीं से दूर, ज्यादा दूर नहीं ऐसे कहते हैं, हमें ठीक पता नहीं, लेकिन कई भक्त कहते हैं कि यहां से ज्यादा दूर नहीं जहां की वो लीला हुई। अगर अधिकृत रूप से ये ज्ञान मिल जाता है तो शायद एक दिन कहीं उस स्थान को देखने के लिए हम चले भी जाएं। शबरी ने भगवान श्री राम की सेवा की, और शबर से और क्या याद आता है आपको? किसकी लीला? जगन्नाथ लीला। आप जानते हैं कि राजा इंद्रदुम्न को सपना आया था, इस सुंदर विग्रह के बारे में। विग्रह का नाम क्या था? नील माधव। और नील माधव को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को इधर उधर भेजा, सब असफल होकर लौट के आए, लेकिन केवल एक मंत्री थे जिनका नाम था विद्यापति, जो लौट कर आए काफी समय के बाद कि हाँ मुझे नील माधव प्राप्त हो गया है, मैंने देखा है नील माधव को। वो शबरों के राजा विश्ववासु उनकी पूजा करते हैं नीलाचल में। उसके बाद में जो लीला हुई आप जानते हैं, नील माधव ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए। भगवान की इच्छा थी कि नील माधव के रूप में दर्शन अब मैंने कर लिए, इस युग में और मैं नहीं दर्शन दूंगा, लेकिन जगन्नाथ के रूप में मैं दर्शन देना चाहता हूं, इसलिए भगवान ने आगे की लीला की। तो शबरों के समाज में हम देखते हैं कि विश्वावसु की इतनी तीव्र भक्ति थी, नील माधव के प्रति इतनी आसक्ति थी विश्वावसु की कि वो किसी को भी ले जाना नहीं चाहते थे, वहां पर किसी को बताते नहीं थे कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या है। कृष्ण को अपना बना लिया था उन्होंने, और कृष्ण को किसी से बांट के लेना नहीं चाहते थे, कृष्ण मेरे हैं। हालांकि कृष्ण को बांटना चाहते हैं भक्त, परंतु दो चीजें हैं। प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं कि भक्ति की शुरुआत में हम सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं, बराबर है ना, लेकिन आगे चल के फिर वो सोचते हैं कि कृष्ण मेरे हैं। फर्क है ना इन दोनों में, क्या फर्क है? दूसरे स्तर में हम सोचने लगते हैं कि कृष्ण हमारी संपत्ति है, जैसे वृंदावन के निवासी सोचते थे। वो सोचते कृष्ण हमारे हैं, यशोदा माता सोचती थी कृष्ण मेरा बच्चा है, और वरिष्ठ गोपियां भी ऐसे ही सोचती थीं, और ग्वाल बाल मित्र सोचते थे कृष्ण मेरा मित्र है, कृष्ण मेरा है। इस प्रकार से शबर विश्वावसु को इतना लगाव था नील माधव से कि किसी को भी दर्शन तक देने के लिए वो तैयार नहीं थे उनके। क्यों? क्योंकि उनको डर था कहीं ये कुछ कर न ले, नील माधव को मुझसे छीन न ले, क्योंकि बहुत आसक्त थे। तो ये आसक्ति शबर समाज में भी संभव है। कितने ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं, और रामायण में भी कथा आती है कि राजा गुह का प्रसंग कब आता है रामायण में? जब वनवास में चले जाते हैं और अयोध्या वासियों को पीछे छोड़कर वो यहां पर गंगा के तट पे आते हैं श्रृंगवेरपुर नाम के स्थान में, और वहां निषाद एक समाज होता है जो नीच समाज माना जाता है, और उनके राजा थे गुह। जब भगवान श्री राम वहां पर आए तो उनका अच्छा स्वागत किया उन्होंने, और रात के लिए उनको विश्राम का स्थान भी दे दिया। लक्ष्मण वहां खड़े थे उनका वहां पहरा देने के लिए, गुह राजा ने कहा कि आप सो जाइए, कोई बात नहीं। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैंने व्रत लिया, मैं तो 14 साल अभी सोऊंगा नहीं, मैं तो केवल रक्षा करूंगा सीताराम की। तो दोनों लक्ष्मण और गुह राजा रात भर राम कथा करते रहे। तो निषादों के समाज में न केवल राजा गुह लेकिन सारे लोग वहां के बड़े राम भक्त थे, और सभी ने पहरा दिया कि कहीं दूसरे को कोई नींद ना आ जाए, दूसरे को कोई कुछ हो ना जाए। किसी को पूरा विश्वास दूसरों के ऊपर नहीं था कि वास्तव में रहकर पहरा देगा कि नहीं, तो सब लोग जागे रहे उस रात को। तो देखिए ऐसे ऐसे समाजों में भी हम देखते हैं कि भक्त हो सकते हैं, हुए हैं, इतिहास में ऐतिहासिक प्रमाण है इन सब चीजों का, और शास्त्रों का प्रमाण भी है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में यह श्लोक आता है जो बहुत ही उपयुक्त है इस समय, जब ये बताया जा रहा है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैसे दुनिया में कितने सारे असभ्य जाति माने जाते हैं, विश्व भर में फैले हुए हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण भगवान के शरण में आते हैं तो वो भी अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादयः
येने च पाप यदपाप्श्राशयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः।
अलग अलग इन वर्गों जातियों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आभीर, शुंभा, यवनाह, खस आदय और अन्य। ये अन्य च पाप, ये अन्य हालांकि इन्होंने पाप भी किए हो, अपाश्रय आश्रय, अगर वो उनका आश्रय लेते हैं जिन्होंने कि भगवान का आश्रय लिया है अर्थात भगवान के भक्त, तो ये सारे जातियां जो हैं हालांकि ये पाप जाति हैं, इन्होंने पाप किए हुए हैं इसलिए उनको ये जाति में जन्म मिलता है, परंतु अगर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का आश्रय लिया तो क्या होता है, शुद्ध्यन्ति तस्मै, पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। प्रभ विष्णवे नमः, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे भगवान का मैं नमन करता हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन सारे जातियों का वर्णन करते हैं। आपको स्मरण है कि जब परशुराम ने पूरा तहस नहस कर दिया सारे क्षत्रिय समाज में, क्योंकि क्षत्रिय लोग उस समय अन्याय कर रहे थे, ठीक तरह से रह नहीं रहे थे, तो 21 बार उन्होंने क्षत्रिय कुल के ऊपर आक्रमण किया, कईयों को मार डाला, और उस समय जो बचे हुए थे क्षत्रिय कुल के लोग वो सारे दुनिया में इधर उधर फैल गए डर के मारे, और फिर वहां पर बस गए, और वहां पर बसने के बाद अपने मूल आर्य या वैदिक संस्कृति को भूल गए, और फिर उनमें तरह तरह के प्रदूषण आ गए, और क्षत्रिय ब्राह्मण की बात तो दूर है, वो तो वर्णाश्रम धर्म के नीचे भी उनका पतन हो गया, म्लेच्छ बन गए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कुरान में जो लोग कुरान को नहीं मानते उनको काफिर कहते हैं, जैसे ईसाई धर्म में जो लोग बाइबल को नहीं मानते उनको हेदन कहते हैं, हेदन मतलब उसी प्रकार के जो पतित लोग हैं जो मानते नहीं हैं, तो उसी प्रकार से वैदिक भाषा में उनको म्लेच्छ कहते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म से पतित हैं उससे भी नीचे हैं, म्लेच्छ, यवन इत्यादि। तो ऐसे कई वर्ग हैं। म्लेच्छ विशेष करके उन लोगों को संबोधित करता है जो कि मांसाहार करते हैं इत्यादि, परंतु म्लेच्छ सर्वसाधारण यह भी एक शब्द है कि जो वर्णाश्रम धर्म से भी नीचे गिर पड़े हैं, शूद्रों से भी नीचे। तो ऐसे कई वर्ग हैं। और थोड़े दिन पहले हमने एक किताब पढ़ा था जो कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने लिखा है, उन्होंने काफी संशोधन किया है और आधुनिक किताबों से, ग्रंथों से, संशोधन से और पुराने ग्रंथों से भी उन्होंने अभ्यास करके, विश्लेषण करके जो दुनिया में अलग अलग देश हैं, समाज हैं, ये सिद्ध किया है कि उनका उद्गम वास्तव में इनका संबंध भारतवर्ष से है और वैदिक संस्कृति से है। जैसे ग्रीस देश है, इजिप्ट है, टर्की है, यहाँ तक कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के जो संस्कृति है उसका किस तरह से ये वैदिक संस्कृति से एक बहुत पुराना और गहरा संबंध है। उनके जो पद्धतियाँ थीं, उनकी सभ्यता, उनकी जो आराधना करने की पद्धति, जिन लोगों को भी उपासना वो करते थे, अगर गौर से इसका विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वास्तव में मूल संस्कृति पहले वैदिक संस्कृति थी। यहां तक कि भाषाओं का भी विश्लेषण उन्होंने किया, हर एक भाषा का विश्लेषण शब्द निकालकर दिखाया कि किस तरह से ये संस्कृत से जुड़े हुए हैं। रशिया में, रशियन भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के समान हैं, जैसे वो एक को एक, एक, एक कहते हैं, हम एक, एकम, संस्कृत में एकम है, और वो दो को द्वे कहते हैं जो संस्कृत में भी द्वे ही कहते हैं, और संस्कृत में तीन के लिए त्रीणी और रशियन में त्रि, इस प्रकार से, और संस्कृत में पांच के लिए पंचम तो पंच कहते हैं, पंच। इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। उसी प्रकार से रशिया के पास एक और देश है जिसका नाम है लिथुएनिया। लिथुएनिया की भाषा जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा संस्कृत से मिलती जुलती है, और ऐसे कई देश हैं जब भारत के राजदूत बल्गेरिया देश में थे, भारत के उस देश के राजदूत, तो उन्होंने उस सरकार को समझाया कि देखिए आपके प्रथा में, आपके भाषा में संस्कृत से कितने शब्द मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने तुरंत एक नए संस्था शुरू कर दी, विश्वविद्यालय में एक विभाग चालू कर दिया इसके इसका संशोधन करने के लिए। लिथुएनियन में भी आग को अग्नि कहते हैं। इस तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं इस किताब में, ऐसे सैकड़ों उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और विशेष करके मुझे याद है कि जब हम रशिया गए हुए थे कई साल पहले, तो एक भक्त हमको बता रहे थे कि वहां और एक प्रांत है आर्मेनिया, और आर्मेनिया में एक बहुत प्राचीन जगह है वहां, वो अब खाली पड़ा है, इमारत है, खाली पड़ा है, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसे पुराने एक इमारत समझकर लोग, पर्यटक जो है, जाकर फोटो वोटो खींचते हैं वहां पर। और उस मंदिर का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है, टेम्पल ऑफ द लिटिल ब्लू बॉय, छोटे नीले रंग के बालक का मंदिर। अब ये नीला लड़का बच्चा कौन है उनको नहीं मालूम, कौन है आप सबको मालूम है, लेकिन आर्मेनिया के देश के लोगों को, रशिया के देश के लोगों को नहीं मालूम। और इंद्रदुम्न महाराज इस्कॉन के एक सन्यासी, वो बता रहे थे, वो रशिया में एक प्रोफेसर से, अध्यापक से मिलने गए थे, तो उस अध्यापक ने कहा देखिए इसमें कोई संशय नहीं है, और रशिया में भी यह सर्वविदित है कि जो हमारे देश की, हमारे देश का इतिहास है, इसका आपके वैदिक संस्कृति से बहुत ही गहरा संबंध है, लेकिन केवल इतना है कि आप किस हद तक उस पुराने स्थिति तक हमको फिर से परिवर्तन करके ला सकते हैं, क्योंकि अब अनेक धर्म हैं अभी जो आधुनिक काल में आ गए हैं और वो अभी अपना जड़ पकड़ लिए हैं वहां पर, तो वो ये कृष्ण भावना के, भावनामृत संघ के प्रचार को रोक रहे हैं। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि इस बात की कोई संदेह नहीं। तो ऐसे देखा जाए सारे विश्व भर में चमत्कार की बातें हैं, ऐसे ऐसी बातें जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में यह हुआ ही होगा। जो ग्रीस देश में, रोम देश में, जो उनकी जो देवी देवताएं थे जिनकी वो पूजा करते थे, बिल्कुल हमारे यहां वैदिक संस्कृति के देवी देवताओं से मिलते हैं, केवल नाम बदले हुए हैं, थॉर, जियस, ओलंपस, ऐसे सब उनके नाम हैं, लेकिन है यहां के देवी देवता। इस प्रकार से अलग अलग जगहों में यही बात है। तो क्यों हुआ, जब परशुराम ने उनको मार डाला, वो डर के मारे इधर उधर जाके बस गए। तो प्रभुपाद कहते हैं किरात, किरात ये क्या है, किरात आजकल छोटा नागपुर और बिहार में संतल परगना उस भाग का प्रांत है जहां पे आदिवासी लोग कहीं रहते हैं। हूण, हूण है जो जर्मनी भाग में रहते हैं और रशिया के पश्चिमी भाग में। आपने शायद विश्व इतिहास अपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सब जगह जाके आक्रमण किया था, अनेक देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था, वो हूण थे। उनका नाम याद है, अटिला, अटिला नाम था, अटिला, अभी हमको याद है, सातवीं आठवीं कक्षा में पढ़ा था हूण, तो अभी हमको याद है, प्रभुपाद की किताब पढ़ के अभी सब समझ में आ रहा है हूण। आंध्र, आंध्र यहां है। पुलिंद, प्रभुपाद कहते हैं कि महाभारत में भी आदि पर्व में इसका वर्णन है, और ये पुलिंद क्षेत्र जो है ये भीमसेन और सहदेव ने इसके ऊपर वश किया था, और आजकल उस देश को क्या कहते हैं, ग्रीस, जहां आजकल खेल क्रीड़ा हो रही है ना, ओलंपिक्स हो रहे हैं, वो पुलिंद लोग हैं। पुलिंद ऐसे भी एक सामान्य शब्द है जो कि सारे आदिवासियों को संबोधित करता है, लेकिन विशेष करके पुलिंद ग्रीस देश भी है, और वो पहले क्षत्रिय थे, प्रभुपाद कहते हैं। वे भी भारतवर्ष का एक प्रांत था पहले, जैसे भारतवर्ष तो पहले सारा विश्व था, और ये पुलिंद भी एक प्रांत था, लेकिन बाद में ये क्षत्रिय जो है इनका पतन हो गया, क्योंकि उन्होंने वैदिक संस्कृति को त्याग दिया और फिर वो म्लेच्छ कहलाने लगे। फिर आभीर, ये भी महाभारत में आता है, भीष्म पर्व और सभा पर्व में, और ये सिंध है जो आजकल पाकिस्तान में है। और प्रभुपाद और एक अद्भुत बात भी कहते हैं कि ये आभीर न केवल सिंध है, लेकिन अरब सागर के उस पार भी जो देश हैं जहां अब यवन रहते हैं, वो भी आभीर है, वो भी भारतवर्ष के वश में था, महाराज युधिष्ठिर के वश में था। और मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि ये म्लेच्छ जो हैं इस आभीर के, वो भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करके थोड़े समय के लिए राज करेंगे। ये सही निकला है ना इतिहास में। और उन्होंने ये भी कहा, शास्त्रों में बताया है, प्रभुपाद कहते हैं कि पुलुंद के राजा भी आएंगे, आए ना, कौन, अलेक्जेंडर, सिकंदर, वो सिंधु नदी तक आ पहुंचे, पोरस को हराया ना उन्होंने, आपको याद है, स्कूल से आपने सब सीखा होगा, पोरस राजा को हरा दिया, लेकिन सिंधु के पार नहीं आए वो सिकंदर, फिर वापस चले गए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये दोनों चीजें, आभीर के लोग और पुलिंद, पुलिंदों में से सिकंदर थे और आभीरों की ओर से आए मोहम्मद घोरी, जिन्होंने 1000 साल पहले आक्रमण किया। और फिर शुंभ, शुंभ मतलब ये भी एक पुराना प्रांत था, यवन, म्लेच्छ यवन, ये शब्द का प्रयोग हम करते हैं ना, तो ये यवन कौन है? वास्तव में महाराज ययाति के पुत्र थे, कई पुत्र थे। महाराज ययाति का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में आता है। ययाति को किस लिए हम याद करते हैं, किस विशेष चीज के लिए? भागवत में आपने पढ़ा है इंद्र तृप्ति, लेकिन विशेष करके क्या किया उन्होंने? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक, उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा कि मुझे और बहुत इंद्र तृप्ति करना है, लेकिन मेरा शरीर उतना साथ नहीं देता, तो आपका यौवन आप मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा आप ले लो, और मैं खूब इंद्र तृप्ति करके जब संतुष्ट हो जाऊंगा तो आपका यौवन लौटा दूंगा और मेरा बुढ़ापा वापस ले लूंगा। तो उनके कई पुत्र थे, उनमें से एक यवन भी थे, और सब ने कहा क्षमा कीजिए, हम आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। केवल एक थे जिनका नाम था पुरु, पुरु ने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी। और उनके एक पुत्रों में से यदु भी थे, और उनके यदु के वंश में आए भगवान कृष्ण। तो महाराज ययाति के अन्य पुत्र फिर इधर उधर चले गए, क्योंकि महाराज ययाति पुरु के ऊपर प्रसन्न होकर पुरु को सारा राज उन्होंने सौंप दिया। और फिर यवन नाम का जो है पुत्र, वो बाहर चला गया, आज जो तुर्की माना जाता है, टर्की देश में, और वहां पे बस गए। और ये सारे जो तुर्की देश के लोग हैं वो भी यवन कहलाते हैं, क्योंकि वो महाराज यवन के वंशज हैं। वो भी पहले क्षत्रिय थे, लेकिन पुलिंदों की तरह जब उन्होंने ये वैदिक संस्कृति को त्याग दिया, वो भी म्लेच्छ यवन बन गए। इनका वर्णन भी महाभारत के आदि पर्व में आता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि और एक राजकुमार था जिसका नाम था तुर्वशु, वो भी एक यवन था, और उसके देश को भी देश के ऊपर भी आक्रमण किया था सहदेव ने, जो कि पांडवों में से एक हैं। और जब दुर्योधन ने सारे विश्व भर से सेनाओं को एकत्र करने का प्रयास किया युद्ध के लिए, तो उस समय यवनों ने भी दुर्योधन का साथ दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और यह भी भविष्यवाणी हुई थी कि यवन भी भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करेंगे, और यह भविष्यवाणी भी ठीक निकली। आगे खस, खस देश, खस मतलब, प्रभुपाद कहते हैं कि इनका भी वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में आता है। और खस वो लोग हैं जिनको ऊपर होठों के ऊपर या मूछ जहां होती है, उनके पुरुषों को बाल कम होते हैं, नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। कौन से लोग हैं? चीनी लोग, चीन देश के लोग, बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल पूर्व भाग में जो रहते हैं, उनके ज्यादा मूछ वगैरह, चीनी लोगों के आपने बहुत कम देखे होंगे मूछ वगैरह, तो उनको खस कहते हैं। ये सारे जो प्रांत हैं ये अलग अलग जगह फैल के वैदिक संस्कृति भूल गए और इनका पतन हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर बताते हैं कि ऐसे जितने भी वर्ग क्यों ना हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का आश्रय लेते हैं, कि जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, तो शुद्धयन्ति तस्मै, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि भक्ति मार्ग में जाति का बिल्कुल कोई विचार नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है परंतु भगवान श्री कृष्ण का की भक्ति नहीं करता, तो फिर क्या लाभ है? और इसी तरह से देवहूति माता श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में भी एक सुंदर श्लोक बोलती हैं अपने पुत्र कपिल देव से।
यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद् यत् प्रवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचेद् श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवानुदर्शनात्।
वो कहती हैं यन नामधेय श्रवण अनुकीर्तनात् यत् प्रवहणात् यत् स्मरणात् अपि क्वचित्। श्वादोः, श्व मतलब कुत्ता, अदह मतलब खाने वाला, श्वदह मतलब जो व्यक्ति चंडाल है, कुत्ते का मांस भी खाता है, मतलब बहुत नीच है, अगर वो भगवान का नाम लेता है, कैसे लेता है, श्रवण, या भगवान का नाम श्रवण करता है, अनुकीर्तनाद वो कीर्तन करते रहता है, प्रहवणाद या नमस्कार करता है, दंडवत करता है भगवान कृष्ण को, स्मरणाद स्मरण करता है, कितना, यत क्वचित, क्वचित मतलब एक आध बार कभी कर लिया, एक बार कर लिया, फिर क्या होता है, सद्य तुरंत सवनाय कल्पते, सवनाय मतलब वैदिक यज्ञ, कल्पते मतलब योग्य हो जाता है। तो माता देवहूति एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हम सबको दे रहे हैं, वो कह रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म श्वपच या श्वादह परिवार में हुआ, चांडाल परिवार में हुआ है, परंतु उसने एक बार भी भगवान का नाम अगर सुना होगा, बोला होगा, स्मरण किया होगा, उसने एक बार भगवान का को दंडवत किया होगा, तो क्या होता है, सवनाय कल्पते, वो वैदिक यज्ञों को करने के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाता है। देखिए कितनी विशेष बात है। तो इससे हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम की शक्ति क्या है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बद्ध जीवों के पाप क्रियाओं का विश्लेषण बड़े विस्तार से करते हैं। प्रभुपाद ने भी भक्ति रसामृत सिंधु को बड़े सरल भाषा में लिखा है। तो आप सबसे निवेदन है कि ये किताब जो है सबके लिए अनिवार्य है, आप अवश्य पढ़िए इस ग्रंथ को, अमृत से भरा हुआ है। कम से कम इसका पहला भाग जो है वो तो सभी को पढ़ना चाहिए, और आगे चल के फिर दूसरा भी भाग आप पढ़ सकते हैं, तीसरा भाग भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद सारा विश्लेषण करने के पश्चात श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, जितने भी गहरे उसके पाप क्यों ना हो, ये सारे पाप धुल सकते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि है, जब भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं सारे पापों को, पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा अगर तुम मेरे शरण में आए तो। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने विश्लेषण किया है, और वो कहते हैं कि भक्ति करने वाला व्यक्ति पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, ये पाप के फल उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो अगर केवल भगवान का नाम लेने से ये फल प्राप्त हो सकता है, तो उन लोगों की बात क्या है जो कि इस प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं। इसलिए माता देवहूति कहती हैं कुनः पुतस्ते भगवान नु दर्शनात्। अगर जिन व्यक्तियों ने चांडाल परिवार में जन्म लेकर भगवान का एक बार नाम लेकर सुनकर स्मरण करके वो वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाते हैं, तो उनकी बात तो दूर है, उनकी बात तो क्या है, कुतः पुनस्ते, जिन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया हो। तो इस बात से, इस श्लोक से दूसरी बात ये है कि नाम लेने से व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वो वैदिक संस्कार संपन्न कर सकता है, कि जो साधारणतः केवल ब्राह्मण को अधिकार करने के लिए दिया जाता है। अब वास्तव में कई ऐसे ब्राह्मण होते हैं, स्मार्त ब्राह्मण विशेष करके, जो हमारी संस्था की निंदा करते हैं कि आपके संस्था में हम देखते हैं कि कई विदेशी लोग हैं जो म्लेच्छ हैं, यवन हैं, या जो भारतीय भी हैं लेकिन ब्राह्मण परिवार के नहीं हैं, वो लोग बैठे वैदिक यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, ये ठीक नहीं है, आप हमारे वैदिक धर्म को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये यही बात है जो कि इन स्पार्थ ब्राह्मणों ने हरिदास ठाकुर के खिलाफ जो निंदा की थी वही बात है। लेकिन अब माता देवहूति के इस वचन से, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो प्रभुपाद ने पद्धति स्थापित की वो प्रामाणिक है, इसका प्रमाण है, श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, ये अधिकृत है, शास्त्रिक प्रमाण यहां पर है। वास्तव में वैदिक यज्ञ करने के लिए संस्कार होने की आवश्यकता है, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ासन, मुंडन संस्कार इत्यादि कितने सारे संस्कार हैं, उपनयन संस्कार, और साथ साथ वैदिक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, पठन पाठन यजन याजन कैसे यज्ञ करना यह भी ज्ञान होना चाहिए। और जब ऐसे हो जाता है तब वो ब्राह्मण व्यक्ति भी यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु भी बहुत मानते हैं, वो कहते हैं कि सद्यः शब्द का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है तो वो उस चीज को करने के लिए योग्य हो जाता है जिसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने को बहुत साल लग जाते हैं, कई संस्कार करवाने पड़ते हैं इत्यादि। तो देखिए कितना कितना महत्वपूर्ण बात है। एक चंडाल जो है वो चंडाल परिवार में जन्म क्यों लिया है उसने, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के पाप थे। साधारणतः कर्म के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसको एक तथा कथित ऊंचे जाति में जन्म मिलता है, कोई अगर पाप करता है तो उसे तथा कथित नीच योनि में या नीच जाति में जन्म मिलता है। तो चांडाल व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे, परंतु अब जबकि वो भगवान का नाम ले रहा है तो ये सारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन की अन्य पद्धतियां हैं, जैसे योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, इससे अप्रारब्ध कर्म नष्ट हो सकते हैं। मतलब वो कर्म जिनका फल आने वाले जन्मों में हमको मिलने वाला है, अप्रारब्ध, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस जन्म में प्राप्त होने वाले कर्म, प्रारब्ध कर्म, वो नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति से न केवल अप्रारब्ध कर्म, आने वाले कर्मों के फल, न केवल वो नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस जन्म के कर्म, प्रारब्ध कर्म, वो भी नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि आदमी का स्वभाव भी, जो कि उसका प्रारब्ध है, वो भी बदल सकता है भक्ति करने से। स्वभाव वैसे कुत्ते की दुम की तरह होता है, आदमी का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हम सबको अनुभव है ना, अपना भी स्वभाव बदलना भक्ति करने के बाद भी कितना कठिन है। लेकिन भक्ति अगर कोई तीव्रता से, हृदय से, श्रद्धा से करे तो उसका मूल स्वभाव भी बदल सकता है। इसका मतलब है कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है, और ऐसे व्यक्ति को भक्ति का, भक्ति के पथ का आश्रय लेने से सीधे यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। जहां की एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने वाले बच्चे को संस्कार की आवश्यकता होती है, अगर वो वैष्णव नहीं है तो। जन्म न जायते शूद्र संस्काराधि भवेद द्विज, वेद पाठात भवेद विप्रो, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेता है लेकिन जन्म लेते समय वो शूद्र माना जाता है, क्योंकि अभी तक कोई संस्कार नहीं किए गए हैं, कोई शुद्धिकरण की क्रियाएं संपन्न नहीं किए हुए हैं। लेकिन जैसे संस्कार हो जाते हैं तो द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म मिल जाता है, आगे जब वेदों का पाठ करता है तो विप्र बन जाता है, और ब्रह्म को, भगवान को, ब्रह्म को जान लेता है तो ब्राह्मण बन जाता है, कृष्ण को जान लेता है तो वैष्णव बन जाता है। तो वैष्णव वास्तव में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व की परिपूर्णता वैष्णवता में है। तो जो व्यक्ति सीधे वैष्णव बन गया है उसे ब्राह्मणत्व के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब स्मार्ट ब्राह्मणत्व की। एक बार जब श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य, पाश्चात्य देश के शिष्य, वो किसी एक तीर्थ स्थान में गए थे, और वहां पर जब पुजारी से मिलने गए तो पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये अमेरिका देश का आदमी और ये भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, भक्ति करता है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े प्रसन्न हुए आपको देखकर कि आप सब लोग ये भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप ये आश्वासन कीजिए कि अगला जन्म आपका अवश्य ब्राह्मण कुल में हो जाएगा, फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रशंसा तो की, लेकिन प्रशंसा क्या, ये प्रशंसा थी क्या? देखने में तो प्रशंसा लग रहा था। तो ये भक्त बड़े निराश हो गए, तो प्रभुपाद के पास गए। प्रभुपाद जी, हमने सोचा कि हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन करने से हम सीधे गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन ये तो पुजारी हमको बोल रहे थे कि हमको अगला जन्म ब्राह्मण का लेना पड़ेगा और फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तब प्रभुपाद को थोड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद ने कहा, जाओ उस पुजारी से जाकर कहो, आप अच्छी तरह से आपकी सेवा करो यहां विग्रह की, तो अगले जन्म में आपको इस्कॉन में जन्म मिलेगा, फिर आप विश्व भर में घूम के आप भक्ति का प्रचार कर सकेंगे, और प्रचार करते करते आप गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो कहा वो भी शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार ही था। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तव में जो ब्राह्मण होता है, जो वैष्णव होता है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। इसलिए आगे अगले श्लोक में माता देवहूती कहती हैं, अहो बतश्वपचो तु गर्यान यज्जिह्वाग्रिवर्तते नाम तुभ्यं तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्ये नाम गृह्णन्ति येते। देवहूति माता कहती हैं, अहो बता श्वपच, अहो मतलब एक आश्चर्य की बात है, श्वपच कोई अगर चांडाल हो तो हम सबके लिए गरियान वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय, किस अवस्था में पूजनीय है? नाम गृणंती ये थे, यह जिह्वाग्रे, अगर उसके जिह्वा के ऊपर आपका नाम गूंज रहा है तो फिर हम सबके लिए पूजनीय है वो। न केवल अभी पहले पिछले श्लोक में जो उन्होंने कहा था देवती माता ने कि वो यज्ञ संपन्न कर सकते हैं, इससे एक कदम आगे बढ़ गई हैं इस श्लोक में। न केवल वो यज्ञ करने के लिए योग्य है, काबिल है, परंतु सारे विश्व के लिए पूजनीय है वो व्यक्ति। अहो बतश्वपचो तो गर्यान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अपने पुत्र से कह रही हैं। उनका पुत्र कौन है? कपिल देव, जो कि भगवान के अवतार हैं। तुभ्यम मतलब आपका, आदर का एक शब्द है। क्यों ऐसे है? क्योंकि तेपुः तपः, उन्होंने सारी तपस्या कर ली है। जुहुवुः, उन्होंने सारे होम अग्निहोत्र यज्ञ सब कर लिए हैं, संस्कार सब कर लिए हैं, आर्यों के आर्य सभ्यता का पालन कर लिया है। सस्नुः मतलब सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लिया है, पवित्र कुंडों में नदियों में स्नान कर लिया है। ब्रह्मानुचूर, सारे वेद शास्त्रों का पठन कर लिया है। इसलिए अब हालांकि उसको चंडाल का जन्म मिला है, क्योंकि वो आपका नाम ले रहा है, फिर भी सारे विश्व के लिए पूजनीय है। वास्तव में दो प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। जो साधारणतः जो ब्राह्मण कुल में दीक्षा है उसको वैदिक दीक्षा कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को उपनयन संस्कार किया जाता है पिता के द्वारा, और पिता उसके कान में, पिता ही उसका गुरु होता है, और पिता कान में उसको गायत्री मंत्र कहता है, उसको उपवीत धारण करना पड़ता है, संध्या वंदन करना पड़ता है। यह वैदिक दीक्षा है। परंतु वैष्णव क्योंकि इस वर्णाश्रम के परे होता है, कम से कम वैष्णवता परे होता है वैष्णव वर्णाश्रम धर्म से, तो पहले चैतन्य महाप्रभु के बाद जो वैष्णव थे वो यज्ञोपवीत नहीं करा करते थे, उपवीत भी धारण नहीं करते थे जनेऊ को। इस पद्धति को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आरंभ किया पंचरात्र का विधि के अनुसार। पंचरात्र का विधि के अनुसार जो दीक्षा होती है उसमें वास्तव में उपवीत नहीं होता, यह केवल भक्ति की दीक्षा है। और अगर कोई प्रामाणिक वैष्णव गुरु एक ऐसे कोई प्रामाणिक व्यक्ति शिष्य को ढूंढ निकालते हैं, ढूंढ पाते हैं जो कि भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है हृदय से, तो उसको वह पंचरात्रि का दीक्षा दे सकते हैं। तो हमारे संस्था में, संप्रदाय में जो दीक्षा दी जाती है वो पंचरात्रि का दीक्षा है, भक्ति की दीक्षा है, वैष्णव दीक्षा है। और केवल इसमें एक दो बातें वैदिक दीक्षा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ग्रहण कर ली। एक बात है उपवीत को धारण करना और दूसरा है ब्रह्म गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, जो कि केवल ब्राह्मण करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको क्यों किया? क्योंकि उस समय विशेष करके बहुत विरोध था वैष्णवों के प्रति, और ये सुस्मार्त ब्राह्मण थे, वैष्णवों को नीच समझते थे। अगर कोई तथाकथित नीच जाति का वैष्णव था तो ब्राह्मण लोग उसको नीच समझते थे उसकी जाति के हिसाब से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सिद्ध करके दिखाना चाहते थे कि वैष्णव किसी भी जाति में जन्मा हुआ क्यों ना हो, वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। और उन्होंने एक बार एक सम्मेलन में जाके इस गलत सिद्धांत का खंडन किया कि ब्राह्मण वैष्णव से श्रेष्ठ है। और फिर उन्होंने सारे समाज में वैष्णवों का सम्मान बनाए रखने के लिए, ताकि लोग समझें कि वास्तव में वैष्णव क्या है, उन्होंने भी दीक्षा में अपने शिष्यों को उपवीत देना शुरू कर दिया। और जो पंचरात्रि का दीक्षा के समय भी जो अन्य गायत्री मंत्र देते हैं, वैष्णव गायत्री मंत्र देते हैं, उनके अलावा ब्रह्म गायत्री मंत्र भी देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे संस्था में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद पंचरात्रि का और वैदिक दीक्षा दोनों दिए जाते हैं कंबाइंड, लेकिन मूल है पंचरात्रि का दीक्षा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी भी कहते हैं हरिभक्ति विलास में कि जैसे अन्य धातुओं से उनका परिवर्तन करके रासायनिक दृष्टि से फिर उनका परिवर्तन सोने में हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति चांडाल है, शूद्र है, यवन है, म्लेच्छ है, उसका परिवर्तन एक वैष्णव में हो सकता है दीक्षा प्रणाली से, वैष्णव दीक्षा से। वैसे लोग आजकल नहीं मानते कि निम्न श्रेणी के धातुओं से सोना बना जा सकता है। जब अभी हम एक थोड़े ही हफ्ते पहले एक कई आयुर्वैद्यों से बात कर रहे थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और एक ने तो MD किया हुआ है आयुर्वेद में, और वो हमको बता रहे थे उन्होंने रस शास्त्र में आयुर्वेद किया है, MD किया हुआ है, और उनके पढ़ाई में ये विषय था कि कैसे अन्य निम्न श्रेणी के धातुओं से सोना बनाया जाए। वो कहते थे ऐसे 13 कदम है जिसमें से 6 मैं जान चुका हूं, अभी बाकी 7 ढूंढना है। तो वो बता रहे थे कि वास्तव में पहले के जमाने में ये रूटीन में साधारणतः ये होता था, वैद्यों को ये ज्ञान था और ऐसे परिवर्तन कर सकते थे और सोना बनाकर उसका उपयोग करते थे, लेकिन किसके लिए? केवल उस जो दवाई है या जो जड़ी बूटी है उसकी परीक्षा करने के लिए, भोग के लिए नहीं, ताकि सोना लेकर उसका भोग करते रहे, उसके लिए नहीं। जैसे कि यज्ञ जब संपन्न किए जाते थे तो कोई पशु की बलि चढ़ाई जाती थी, वास्तव में बलि नहीं थी वो, क्योंकि उस पशु को पुनर्जीवन मिलता था, मनुष्य देह प्राप्त होता था। वास्तव में इसलिए किया जाता था कि मंत्र की परीक्षा करने के लिए, अगर मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से किया हुआ है, विधि विधानों का पालन सही ढंग से किया हुआ है, तो उसे मनुष्य देह प्राप्त हो जाता था परीक्षा के लिए। ठीक उसी तरह से सोना भी इसके लिए बनाया जाता था, लेकिन आजकल ये ज्ञान लुप्त तो हो चुका है। क्यों? मैंने पूछा ऐसे ज्ञान क्यों नहीं है, बोलते हैं लोग सिखाते नहीं दूसरों को। बोले क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि सीखने वालों की योग्यता नहीं है। बोले क्यों नहीं योग्यता है? कहने लगे कि देखो अगर अभी किसी व्यक्ति को यह ज्ञान मिला तो क्या करेगा वो, वो उस आदमी की तरह होगा जो सनातन गोस्वामी के पास आया था ना चिंतामणि लेकर, वो कथा तो आप जानते हैं ना, तो सोना सोना से पागल हो जाएगा आदमी, सोने के पीछे भोग के लिए इस्तेमाल करेगा, फिर लोगों में खून खराबा बहुत बढ़ जाएगा इस फॉर्मूला के लिए, सीक्रेट के लिए, एक दूसरे के खून करते रहेंगे लोग, बहुत उत्पात हो जाएगा सारे समाज में। और वो बताने लगे कि ऐसे कई वैद्य हैं आज भी जो प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, बहुत सरल जीवन जी रहे हैं, और वो थोड़ा थोड़ा सोना बनाते हैं। तो वो बता रहे थे कि ऐसे व्यक्ति हैं, सोना बनाते हैं लेकिन बहुत कम। कितना बनाते हैं? जितना उनको 2-4 दिन के दाल रोटी के लिए चाहिए उतना, फिर उतने से सोने को जाकर वो बेचते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है उसने दाल रोटी, 1-2 दिन के बाद फिर और बनाएंगे, ज्यादा एकत्र करके नहीं रखते, भंडार नहीं रखते सोने का, कल के लिए क्या हमारे आने वाले पूर्वजों के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या नहीं, जितना अब के लिए चाहिए उतना ही थोड़ा सा, और किसी को सिखाते नहीं, क्योंकि मालूम है उनको इसका दुरुपयोग होगा। आजकल के वैज्ञानिक इस रसशास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु ऐसे संभव है। इसके बारे में सनातन गोस्वामी भी बतलाते हैं काफी विस्तार में, और यही दीक्षा है। जब एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति को उच्च श्रेणी का वैष्णव बनाया जाता है, उस पद्धति को दीक्षा कहते हैं, जिससे कि उसको दिव्य ज्ञान प्रदान होता है, जिससे उसको आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वो प्रेरणा मिलती है, भक्ति का मार्गदर्शन मिलता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसे दीक्षा पद्धति से व्यक्ति अगर वो चांडाल भी क्यों ना हो, वो वैष्णव बन जाता है और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहां सद्यह शब्द का अगर आप उपयोग करते हैं, कहते हैं कि एक क्षण में वो व्यक्ति ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है, तो यह कैसे संभव है? तो इसके लिए प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि एकदम से नहीं है, ये पिछले जन्मों ने इसने किया हुआ है। जो भी ये कार्य है, यज्ञ करना, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना, वेदों का पाठ करना, सब कुछ उसने पूर्व जन्मों में किए हुए हैं, इसलिए उसको अब भगवान कृष्ण का एक नाम उच्चारण करने की योग्यता मिली है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं, नाम शब्द यहां पर है जो कि एक वचन संख्या है। इसका मतलब है कि पूरा महामंत्र भी नहीं, अगर कोई राम शब्द कहे, कृष्ण शब्द कहे, बस इतना काफी है। इसका मतलब है कि इसने बहुत कुछ किया है पूर्व जन्मों में। लेकिन इतना साधारण भी नहीं है। प्रभुपाद यह भी कहते हैं कि ये जो नाम है इसको बड़ी शुद्धता से लेना चाहिए, बिना कोई अपराध के। अगर ऐसे नहीं लिया जाए तो फिर ये फायदा नहीं है, जो कि इन दो श्लोकों में बताया हुआ है। भगवान का नाम का उच्चारण जब किया जाए तो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या कोई ऐसे धन कमाने के लिए इत्यादि, तो फिर उससे वो परिणाम नहीं प्राप्त हो पाएगा। इस प्रकार से माता देवहूति कहती हैं कि जो इस भावना से श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है गरियान, वो सबके लिए पूजनीय हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो पुलिंद हैं, पुलिंदी स्त्रियां, हालांकि उनको ऐसे एक नीच योनि में, नीच जाति में जन्म मिला है, फिर भी वो सबके लिए पूजनीय है। और गोपियां जो कि सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की सारे ब्रह्मांड में, वो पुलिंदियों की स्तुति कर रही हैं, कहते हैं कि वे पुलिंद स्त्रियां जो हैं हमारे लिए पूजनीय हैं। क्यों पूजनीय हैं? क्योंकि उनके मन में वो राग उत्पन्न हो गया है, वो भक्ति उत्पन्न हो गई है, जिससे कि वो कृष्ण के बिना, कृष्ण के स्मरण के बिना रह नहीं सकती हैं। इसलिए यहां पे बताते हैं, श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडितेन, कुमकुम का वर्णन यहां पर हो रहा है। लेकिन कुमकुम का वर्णन सुनने के पहले ये पुलिंदी पूर्व जन्म में क्या थे, इसके बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि पूर्व जन्म में कोई ना कोई संबंध जब तक कृष्ण भक्ति से ना हो, तब तक इस जन्म में कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता है। तो ये पुलिंद स्त्रियां, इनका संबंध भगवान श्री रामचंद्र से है। जब श्री राम वनवास में थे, पहले दंडकारण्य गए, दंडकारण्य से होते हुए पंचवटी गए, जो कि आज नासिक धाम के पास में है, तो वहां पर कई ऐसी स्त्रियां थी, आदिवासी स्त्रियां, जिन्होंने श्री राम के सुंदर रूप का दर्शन किया और उनके प्रति आकृष्ट हुए। लेकिन उनको पता चला कि श्री राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया है, तो उन्होंने सोचा कि अब हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी प्राण त्याग देना ही हमारे लिए उचित है। तो श्री राम तो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने अपना वेश बदल दिया और एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, जटाओं सहित, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में दंड और वलकल से अपना शरीर ढका हुआ, उनके सामने आए और कहने लगे कि यह आपके लिए उचित नहीं है, प्राण त्यागने की उचित नहीं। लेकिन द्वापर युग के अंत में जब भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर वो जो आदिवासी स्त्रियां हैं वो शांत हो गई, उनको थोड़ी बहुत सांत्वना मिल गई। और फिर अगले बार द्वापर युग में उन्होंने इन पुलिंद स्त्रियों का जन्म लिया। प्रभुपाद जी भी कहते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में कि जब तक किसी को पूर्व जन्म से कृष्ण भक्ति का अनुभव नहीं है तब तक वो इस जन्म में भक्ति नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में भक्ति कर रहा है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में भी वो भक्ति कर रहा था, और जहां से पिछले जन्म में उसने भक्ति छोड़ी थी वहां से वो भक्ति इस जन्म में जारी रखेगा। तो खैर, ये पुलिंद स्त्री जो हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी और सुनकर उस ध्वनि का पीछा करने लगी, और उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तीव्र भक्ति की भावना जागृत हो गई। और चलते चलते इस ध्वनि के पीछे पीछे आते आते जब वो वन में आए तो उन्होंने अचानक इस घास के ऊपर, तृण के ऊपर, उन्होंने इस कुमकुम का दर्शन किया। राग, राग मतलब लाल रंग का श्री कुमकुमेण, जो बहुत ही सुंदर था, इसका दर्शन किया। और जैसे ही उन्होंने इस कुमकुम का दर्शन किया, स्मर रुजस तृण रूषितेन, तो तुरंत उनको अपने हृदय में बहुत तीव्र आकर्षण हो गया भगवान कृष्ण के प्रति, असहनीय आकर्षण। ऐसे कई चीजें जिसको उद्दीपन कहते हैं, जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसका स्मरण करके मात्र व्यक्ति को अचानक भगवान कृष्ण की तीव्र भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी, जैसे बरसात के मौसम का बादल, कोई भक्त होते हैं जो बरसात के मौसम के बादल को देखकर तुरंत कृष्ण को याद करते हैं। तो ये सब प्रेरणा है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के लिए। तो उसी प्रकार से कुमकुम था, तो इस कुमकुम को जब उन्होंने वृंदावन के घास के ऊपर देखा, तुरंत कृष्ण का स्मरण बड़े तीव्रता से आया, और इस प्रकार से अपने आप को रोक नहीं पाई। तो उन्होंने क्या किया, लिम्पंत्य आनन कुचेशु जहुस्तदाधिम, फिर उन्होंने उस कुमकुम को घास से उठाया और अपने सारे शरीर पर लगा दिया, और उस समय उनका मन शांत हो गया। तो यह क्यों हुआ, क्योंकि ये कुमकुम के विशेष गुण थे। कुमकुम का वर्णन वैसे श्रीमद् भागवत में कई कई जगह आता है, और ये भी एक प्रेरणा है, उद्दीपन है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। आपको ज्ञात है कि जब भगवान श्री कृष्ण वन में जाते थे तो कोई बाटा के चप्पल पहन के नहीं जाते थे, खाली पैर जाते थे, नंगे पैर, और इसके बारे में हमेशा ब्रजवासियों को खेद होता था, दुख होता था, गोपियों को, माता यशोदा को। और गोपियां हमेशा मन में विचार करती थीं कि श्री कृष्ण के चरण कमल इतने कोमल हैं, नाजुक हैं, कि हमारे वक्षस्थल पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनको ये कठोर लगेगा। और ये चरण कमल अब जब जंगल में जाएंगे तो वहां पर कितने छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, इससे कितना उनको कष्ट पहुंचता होगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छाओं को जान लिए और इनकी इच्छा पूर्ण हो गई। और गोपियों की आदत थी कि वैदिक संस्कृति में महिलाएं जो हैं वो कुमकुम जो हैं वो लगाई करती थी अपने शरीर के अलग अलग स्थानों में। तो फिर ये शरीर से कुमकुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थानांतरित हो गया स्पर्श से, और फिर यही अलंकार लेकर भगवान श्री कृष्ण जब चलते थे वृंदावन के जंगल में, वहां जो दव पड़ जाता था, जो पानी होता था सुबह सुबह, उससे वो धुल जाता था और घास के ऊपर आ जाता था। तो इस घास को पुलिंद स्त्रियों ने देखा जो कि इस कुमकुम से सुशोभित था, तो इसलिए उनके मन में इच्छा हो गई कि तुरंत इस कुमकुम को उन्होंने उससे प्राय अभिषेक कर लिया। और इसके बाद में श्रीमद् भागवत में कई जगह ऐसे वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह जो हैं वो कुमकुम से सुशोभित हैं। अक्रूर भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमल जो हैं वो बड़े बड़े देवताओं के लिए पूजनीय हैं, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, लेकिन यही जो चरण कमल हैं वृंदावन के जंगल में चलते हैं, और इन चरण कमलों के ऊपर वास्तव में ये कुमकुम, लाल रंग के सुंदर कुमकुम का लेप है। इस प्रकार से अक्रूर भी कुमकुम का उल्लेख करती हैं, करते हैं। जब द्वारका के निवासी कुरुक्षेत्र में चले गए थे सूर्य ग्रहण के समय, तो उस समय भी वृंदावन के वासी वहां पर चले गए थे। वहां पर हस्तिनापुर से भी सब आए थे। जब द्रौपदी देवी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण के महिषियों से, उनके रानियों से हुआ, तो काफी लंबी बातचीत हुई। श्री कृष्ण के गुणगान कर रहे थे, तो सारे जो महिषियां हैं द्रौपदी देवी से कहने लगे कि वास्तव में हमारे हृदय में कोई ऐसी भौतिक इच्छा नहीं है, हम इस पृथ्वी लोक के ऊपर वश करने के इच्छुक नहीं है, हमें इंद्र का भोग नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, यहां तक कि ब्रह्मा जी का पद भी हमें नहीं चाहिए, सारे ब्रह्मांड को वश में नहीं करना चाहते हैं, इस संसार की कोई भी चीज को हम नहीं चाहते हैं, हम मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, यहां तक कि हम वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं चाहते हैं, हम केवल एक चीज को चाहते हैं और वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की जो रज है, जिसमें कि उनकी प्रेयसी के कुमकुम है, उस चरण धूलि को हम हमारे सर पर रखना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन की इच्छा है, हमारे जीवन की परिपूर्णता है, हमको वैकुंठ में नहीं जाना, बस इतना हो हमारे लिए काफी है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण कुमकुम नहीं है, क्योंकि ये भी गोपियों के ऊपर था, तो पुलिंद स्त्रियां जो हैं इस कुमकुम को अपने शरीर के ऊपर लगाकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और गोपियां विचार कर रही हैं कि कितने भाग्यशाली हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में कितनी तपस्या की होगी कि उनको यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है। इस श्लोक में वास्तव में वेणु का वर्णन नहीं है, वेणु के गीत का वर्णन नहीं है, वेणु गीत को सुनकर पुलिंदी स्त्रियां जो हैं वो यहां पर जंगल में आके उन्होंने उस कुमकुम को अपने शरीर पर लगाया। लेकिन इस श्लोक में विशेष बात यह है कि गोपियां जो है मोहित हो गई हैं कि देखो इन पुलिंदी स्त्रियों का सौभाग्य कितना है। आगे यहां पर वो कहते हैं दैतस्तन मंडते ना, कि ये दैता मतलब प्रेयसी कौन है। वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि ये वास्तव में केवल श्रीमती राधा रानी है और कोई नहीं, और इस प्रकार से ये कुमकुम बहुत विशेष है, कोई साधारण कुमकुम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को यहां उरुगाय शब्द से संबोधित किया गया है। उरुगाय पदाब्ज, पदाब्ज मतलब उनके चरण कमल। उरुगाय, उरु मतलब कोई कोई महात्मा, कोई महान व्यक्ति, और गाय मतलब जिनकी स्तुति होती है कोई उपयुक्त श्लोकों से, गीत से, इसलिए उरुगाय। तो भगवान श्री कृष्ण है उरुद गीयति गोप, जिनके बारे में गोप जो है वो सुंदर गीत गाते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही गोप वृंदय ही, गोप वृंदय ही गीत कीर्ति ही, कि जो गोप हैं वो भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उरुगाय कहते हैं। उरुगाय शब्द का दूसरा अर्थ है कि जो गीत गाते हैं लेकिन अपने बांसुरी के माध्यम से, इसलिए उनका नाम उरुगाय है। और किस प्रकार से ये श्रीमती राधा रानी के शरीर का जो कुमकुम है श्री कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर आ जाता है, इसके बारे में छोटी सी लीला है। एक बार ऐसे हुआ कि श्रीमती राधा रानी सूर्यदेव की पूजा करने के बहाने सूर्यकुंड में, वो सूर्यदेव की पूजा करने के लिए जाती थी, वो तो बहाना था, वास्तव में कृष्ण से मिलने जाती थी सारी गोपियां, वो जाना चाहती थी, परंतु जटिला जो कि उनकी सांस थी, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमने बहुत कुछ सुना है कि ये जाके कृष्ण से मिलती हैं तो आज इनको नहीं छोड़ेंगे। तो जब उन्होंने नहीं छोड़ा जाने के लिए, तो श्रीमती राधा रानी के मन में इतना विरह उत्पन्न हो गया कि एक मुरझे हुए फूल की तरह वो गिर पड़ी, और उनका शरीर जो है बुखार की वजह से बहुत गर्म गर्म हो गया। इतना बुखार हो गया कि सभी लोग चिंतित हो गए, सारी गोपियां एकत्रित हो गई, कोई चंदन लगा रहे हैं, कोई पंखा लगा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, ठंडा जल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा है। फिर कोई गोपियों ने जाके जटिला से कहा कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है, और तो जटिलक बहुत घबरा गए कि क्या होगा, हमारा वंश आगे चलेगा कैसे, और मैं तो बदनाम हो जाऊंगी अगर ऐसे हो जाएगा तो, क्या होगा क्या होगा, बहुत चिंतित हो गई। उस समय पौर्णमासी वहां पर आ गई। पौर्णमासी काफी वृद्ध हैं वृंदावन में, सफेद बाल हैं, कपड़े भी सफेद हैं, और काफी बुद्धिमान मानी जाती हैं, बड़ी विद्वान हैं। तो जब आई, वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की योजना भी करती हैं, उन्होंने देखा क्या बात है, कहने लगे जटिला देखो मैं कितनी बार तुमसे कह चुकी हूं कि तुम राधा रानी की पतिव्रता को तुम के बारे में संशय नहीं करना। तुम जान लो कि तुम्हारे घर में जो भी है, तुम्हारे गाय है, तुम्हारा बच्चा है अभिमन्यु, और जो भी कुछ चल रहा है केवल तुम्हारे बहू की पतिव्रता की ओर से चल रहा है, संशय नहीं करना। तो जटिला बोलने लगे अब क्या किया जाए, इसके लिए कोई एक योग्य उपाय सोचना चाहिए, कोई योग्य दवाई चाहिए। क्या दवाई, कौन कहां है वो वैद्य? तो नहीं, इसके लिए कोई वैद्य काम नहीं करेगा, दवाई कोई काम नहीं करेगा, इसके लिए ये चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति मिल जाए, एक ऐसे ऋषि मिल जाए जो कि पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी है, और वो जब यहां आएंगे अपनी कृपा देंगे तब ये ठीक हो सकती है। तो जटिला पूछने लगे कि क्या ऐसे कोई महान साधु यहां पर है कहीं व्रज में जो आत्म साक्षात्कारी है? तो पौर्णमासी ने कहा है, मेरे आश्रम के पास में अभी अभी एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी आए हैं, और ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी वास्तव में गर्ग मुनि के आश्रम में बहुत सीख के आए, उनके शिष्य हुए हैं, और नारद मुनि के चरण में भी उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा उपदेश प्राप्त किए हैं, और वो चमक रहे हैं कोटि कोटि सूर्यों के समान, उनका तेज है ब्रह्मचर्य के पालन की वजह से, और वहां पर बैठे हुए हैं। देखो तुम्हारा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति यहां पर हैं, अगर चाहो तो उनको बुलाएं। हाँ हाँ जरूर जरूर, जल्दी बुलाइए जल्दी बुलाइए। फिर थोड़े गोपियों को भेजा गया, और वहां कृष्ण उदास बैठे थे अपने बांसुरी नीचे, तो गोपियों ने बताया कि पौर्णमासी ने ऐसे ऐसे कहा है। अच्छा, तो फिर ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वेश पहन लिया, भगवान कृष्ण ने जटा इत्यादि सब धारण करके, कमंडलू हाथ में दंडा लेकर ग्रहण करके आए, और गोपियों के बीच में आए, श्रीमती राधा रानी को देखा, बड़ा गंभीर चेहरा बनाए रखने का बहुत प्रयास किया, जैसे कि एक ब्रह्मचारी को करना चाहिए महिलाओं को बीच में, और फिर पौर्णमासी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, हमारा अहो सौभाग्य है कि आप यहां पर आए हैं। देखिए ये कन्या यहां पर है, ये युवती यहां पर है, बहुत बुरी हालत है, तो कृपया आपके चरण कमलों से, जो कि बहुत शीतल है, इसके ठंडक से इसके जो बुखार है वो कम हो सकता है, तो आपके चरण कमल इनके शरीर से स्पर्श कीजिए, फिर आपके चरण कमलों के ठंडक से ये बुखार दूर हो जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। अरे लेकिन मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे ये कर सकता हूं, मेरे लिए संभव नहीं है। ना ना ना, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे कितने सालों की तपस्या नष्ट हो जाएगी। फिर जटिला बोलने लगे हाथ जोड़ के, महाशय आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपको बहुत सारे गाय दान में देंगे, बहुत कुछ करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन कृपया ये कर लीजिए, नहीं तो ये बच्ची मर जाएगी, फिर क्या हो जाएगा हमारे कुल का। तो बहुत कहने पर फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, पहली बार कर रहा हूं, अभी ऐसे आगे कभी नहीं करूंगा, आपके लिए केवल कर रहा हूं। फिर पौर्णमासी के निर्देश अनुसार श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों को श्रीमती राधा रानी के शरीर के ऊपर रखा, और उस स्पर्श से श्रीमती राधा रानी का बुखार पूरी तरह से दूर हो गया, और इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के शरीर के ऊपर का जो कुमकुम है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग गया। और फिर ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब वापस चले गए वापस वृंदावन के वनों में, तो वही कुमकुम सब जगह फैल गया, और यही कुमकुम है जो कि पुलिंदियों ने देखा, और इस पुलिंदियों ने फिर उसी कुमकुम को अपने शरीर के ऊपर लेप लगाकर भगवान के दिव्य विचार में हमेशा मग्न रहे। इस प्रकार से गोपियां स्मरण कर रही हैं। अभी वास्तव में पुलिंदियां वन में क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं वो अलग बात है, लेकिन गोपियां अपने हृदय में दृश्य को देख रही हैं और सोचती हैं कि काश हमारा अगले जीवन में जन्म पुलिंदी का हो जाए, जैसे वो कहते थे काश हमारा अगले जन्म किसी मृग का हो जाए, हरिण का हो जाए, मोर का हो जाए, वैसे इस श्लोक में ये ध्यान जब चल रहा है, अब सोच रहे काश हमारा अगला जन्म पुलिंद स्त्री का हो जाता तो हमारा जन्म सफल हो जाता। इस प्रकार अपनी भक्ति भावना को व्यक्त कर रहे हैं गोपियां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण पूर्व जन्म में है, उसके कोई भगवान की अगर सुकृत नहीं किया है, तब तक उसको इस जन्म में भगवान की भक्ति या भगवान का नाम में नहीं ले सकता है। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि कोई उसका कोई भी कुछ भी भक्ति क्यों ना की अगर नहीं किया है किसी ने जन्म में, फिर भी अगर वो कोई भगवान का दर्शन करते हैं, कोई भक्त बाहर जाते हैं संकीर्तन करते हैं, उसे सुनते हैं, तो क्या इस जन्म में भी अगर पिछले जन्म में कुछ भी नहीं किया तो फिर भी वो नाम नहीं ले सकते?
नहीं, पिछले जन्म में थोड़ा कुछ तो किया होना चाहिए। वो थोड़े से वो अज्ञात सुकृति है। जैसे आप बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सुना एक आदमी ने कृष्ण का नाम, वो अज्ञात सुकृति शुरू हो गई। और ऐसे शुरू होकर जब इसकी पूंजी बढ़ जाती है पर्याप्त मात्रा में, तब फिर वो एक दिन भक्तों का संग करने के लिए योग्य हो जाता है। फिर भक्तों के संग में आकर वो भक्ति को स्वीकार कर सकता है। जब तक कि उसकी सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ती नहीं है, तब तक वो अज्ञात सुकृति एकत्र करता रहेगा, लेकिन भक्ति अपने रूप अपनी स्वेच्छा से करेगा नहीं, वैसे इतनी तीव्रता से करेगा नहीं। तो कोई ना कोई अवश्य संबंध है। अगर आप किसी को मिल रहे हैं, उनको कृष्ण प्रसाद दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति का इतिहास क्या है? उसको ही क्यों, आप दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं मिले? उसके भाग्य में क्यों लिखा था ये प्रसाद को पाना? इसका मतलब है इसके पूर्व जन्म में कुछ था, सुकृति थी, जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ने के लिए अभी संधि मिल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, और वो है भगवान के भक्तों की कृपा। भगवान के भक्त भी केवल अपनी कृपा से अनेक लोगों को, जिनके शायद सुकृति बहुत कम हो, अल्प सुकृति वालों को भी वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा मध्यम अधिकारी भक्त के कृपा के ऊपर निर्भर है, क्योंकि जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो कोई भेदभाव करते ही नहीं है। जैसे गोपियां सोच रही, अन्य सब भक्त हम नहीं हैं, तो उत्तम अधिकारी भक्त ऐसे ही सोचते हैं, सब भक्त हैं, मैं उनके ऊपर क्या कृपा दूंगा, बल्कि मुझे उनकी कृपा चाहिए। तो वो किसी के ऊपर ऐसी कृपा नहीं देंगे जानबूझकर। और कनिष्ठ अधिकारी अभी तक उतना ऊंचे आए नहीं, लेकिन मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो कृपा करने की इच्छा करते हैं, ये भक्त बनने चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा होती है। तो भगवान सोचते हैं कि ठीक है, जहां मेरी भक्त की कृपा जाएगी वहां मेरी कृपा पीछे पीछे जाएगी। भक्त की कृपा क्या है? आखिर कृष्ण की कृपा है, परंतु इस कृपा को कहां जाना है? वो मार्ग मध्यम अधिकारी जब प्रचार करते हैं, कृष्ण भावना को फैलाने जाते हैं, तो भगवान कृष्ण अपनी कृपा उसी हिसाब से देते हैं। श्रील प्रभुपाद तो मध्यम अधिकारी नहीं है, वो तो उत्तम भागवत है, उत्तम अधिकारी है, लेकिन प्रचार करने के लिए उनको मध्यम अधिकारी का कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उत्तम अधिकारी क्या प्रचार करेगा? मध्यम अधिकारी प्रचार कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी को प्रचार करने हेतु इस स्तर पे कार्य करना पड़ा, और इसलिए प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कितनों के लाखों के ऊपर कृपा कर दी। ठीक है, अनुराग के बीच में अंतर क्या है? वैसे केवल भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, ये ज्यादा एक गहराई का मामला है, इतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जो भी प्रश्न पूछा है, हम आपको उपयुक्त वो पन्ना बताएंगे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, आप जितना विस्तार में चाहिए उतना पढ़ सकते हैं। लेकिन कहना इस समय के लिए काफी है कि ये सब अलग अलग भगवान के प्रति आसक्ति के स्तर हैं, और इन सब के अलग अलग लक्षण होते हैं। ये एक बहुत गहरा विज्ञान है, ये कोई साधारण भावुकता नहीं है जैसे लोग सोचते हैं कि केवल जिसको ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, जो तपस्या नहीं कर सकते, जो भावुक लोग हैं उनके लिए भक्ति है, ऐसा नहीं है। बहुत ही गहरा विज्ञान है ये। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे सब महान बड़े बड़े विद्वान ये क्या भावुक लोग थे? क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? इसलिए तो उन्होंने ऐसे विस्तार में इसका विश्लेषण किया है। भक्ति का कैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने विश्लेषण किया है। और कोई प्रश्न?